جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا आज हम ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद इस क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने सूरतुल अंबिया की इन दो आयात आयत नंबर 83 एंड 84 इनकी तफसीर पढ़नी शुरू कर दी थी। आरिफ़ मसाइल पर हम थे, आरिफ़ कुरान जिल्द नंबर 6 सूरतुल अंबिया के आरिफ़ मसाइल। तो इसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो चुका था, जिसमें हज़रत ने लिखा था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से में इसराइली रिवायात बड़ी तवील हैं। बहुत सारी तफसीलात जो है ना वो उन रिवायात से मिलती हैं, यानी उन हिकायात या उन बातों से जो कि यहूदियों ने या ईसाइयों ने मुसलमानों को बताए, ठीक है, क्योंकि उनकी किताबों में तौरात, इंजील और उनके उसके अलावा जो और बहुत सारी किताबें हैं, तो उनके अंदर अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें मौजूद हैं। तो वो जब मुसलमान होते थे तो मुसलमानों को फिर वो अपनी इन किताबों की बातें बताते थे कि वहाँ हमने ये पढ़ा था, वहाँ हमने ये लिखा हुआ देखा है। तो उन सारी रिवायात को ना इसराइली रिवायात कहा जाता है, क्योंकि इसराइल जो है ये सिर्फ ये इस मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि इसराइल दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम है, ठीक है। तो बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में जो जो उलूम पाए जाते हैं, तो उन उलूम को भी इसराइली उलूम कहा जाता है, ठीक है। तो हजरत ने वाकया लिखना शुरू किया था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को ताला ने इब्तिदा में माल दौलत और जायदाद और शानदार मकानात और सवारियां और औलाद और हशम व खदम बहुत कुछ अता फरमाया था। फिर अल्लाह ताला ने उनको पैगंबराना आजमाइश में मुब्तला किया, यानी ऐसी आजमाइश में, ऐसे इम्तिहान में, ऐसे टेस्ट में उनको मुब्तला किया जो कि पैगंबरों के शायान निशान होते हैं, ठीक है। यानी आम इंसान जो है ना वो इतनी आजमाइश बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इतनी आजमाइश तो सिर्फ पैगंबर बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इनके ऊपर भी ऐसी आजमाइश आई। ये सब चीजें उनके हाथ से निकल गई, ठीक है, और बदन में भी ऐसी सख्त बीमारी लग गई जैसे जजाम होता है कि बदन का कोई हिस्सा बजुज जुबान और कल्ब के इस बीमारी से नहीं बचा, ठीक है। जजाम जो है उसको अंग्रेजी में लेप्रसी कहते हैं, और ये बेसिकली एक स्किन डिजीज होती है, ठीक है, और पूरे के पूरा जिस्म के ऊपर इनको ये जजाम हो गया। वैसे तो ये कंटेजियस नहीं होता, लेकिन उस जमाने में देख करके ही लोग जो है ना इसको देख करके ही हैबत ज्यादा हो जाते थे कि इंसान की शक की जिल्द जो है वो इतनी खौफनाक नजर आनी शुरू हो जाती थी कि समझते थे कि ये बीमारी जो है ना वो यानी लगने की बीमारी है, छूत की बीमारी भी जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो इस वजह से ना फिर ऐसा शख्स को जो है फिर वो लोग किसी कुएं में या किसी ऐसी गैर आबाद जगह पर डाल देते थे कि जहां पर के लोगों का गुजर नहीं होता था, ठीक है। तो ये मशहूर ये ईसा अलैहि सलाम के जमाने में ये कैसे हो? हाँ, तभी तो उन्होंने फिर ये मैसेज लिखा है कि जजान को उर्दू में बर्स कहते हैं। खैर, तो अब आगे लिखते हैं कि यानी यहां तक तो हमने ईद से पहले पढ़ा था आखिरी क्लास में, तो आगे फरमाते हैं कि वो इस हालत में जुबान और कल्ब को अल्लाह की याद में मशगूल रखते और शुक्र अदा करते रहते थे। ठीक है, यानी जुबान के ऊपर ये बीमारी नहीं आई थी, वरना अगर इंसान की जुबान के ऊपर भी वो जैसे उसको बर्स तो नहीं कहते, लेकिन जैसे स्ट्रोक हो जाता है, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, क्या कहते हैं स्ट्रोक हो जाने को, फॉलेज, लकवा, हाँ लकवा या फालिज का अटैक हो जाता है ना, तो फालिज ज्यादा जुबान जो होती है फिर वो कुछ अदा नहीं कर सकती, वो बोल नहीं सकती। ठीक है ना, तो इनको जुबान के ऊपर ये नहीं हुआ था। और दूसरा ये कि अंदर के जो इनके ऑर्गन्स थे, जिसके अंदर के फिजिकल ऑर्गन्स भी आ गए, और अंदरूनी यानी जो रूह थी इनकी, रूह तो जिंदा थी। ठीक है, तो कल्ब का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो उसमें यहाँ पर मुराद जिस्मानी आजा जो कि अंदर मौजूद होते हैं, कल्ब और फेफड़े और ये सारी चीजें तो चल रही थी ना, वरना तो फिर ये जिंदा ही ना रहते। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी चल रही थी और उनकी रूह भी जिंदा थी, यानी इनका दिल भी जिंदा था, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा था, जिक्र कल्बी भी कर रहे थे और जिक्र लिसानी भी करते थे। ठीक है, दो किस्म के जिक्र होते हैं उमूमी तौर पर जिनको कहा जाता है। एक होता है जिक्र लिसानी, जो आप जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके अलावा जितनी भी तस्बीहात हैं और दुरूद शरीफ हैं और इस्तिग़फ़ार हैं, ये सब का सब जो है जो इंसान जुबान से पढ़ता है ना, उसको जुबानी जिक्र या लिसानी जिक्र कहते हैं। और इसका जो है वो सवाब भी होता है और इसका असर जो है वो इंसान के अंदर भी होता है, इंसान की रूह के ऊपर भी इसका असर होता है। जुबान से जो जो बातें इंसान अदा करता है उसका असर होता है। ठीक है, और उसी तरीके से एक होता है जिक्र कल्बी। जिक्र कल्बी का मतलब क्या होता है कि जुबान से तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं या अल्लाह ताला को याद रख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है याद करना, याद करना जो है ना, ये एक एक्टिव काम है, यानी आप बाकायदा बैठ करके जो है ना वो सोच रहे हैं, अल्लाह ताला की मखलूकात के बारे में सोच रहे हैं, अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सोच रहे हैं, अल्लाह ताला के जो है वो जो जो अय्यामुल्लाह हैं, यानी अल्लाह ताला की जो बातें हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया को कैसे बनाया, फिर दुनिया के अंदर इंसान को कैसे नाजिल किया, फिर उसके बाद इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत से नवाजा, और फिर इंसानों के ऊपर ये आजमाइश रखी कि उस हिदायत को फॉलो करो या ना फॉलो करो। ठीक है ना, तो फिर जिन लोगों ने फॉलो किया उस हिदायत को, कबूल किया उस हिदायत को, तो वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया वो नाकाम हो गए, उनके ऊपर अजाब आए। ये सब अय्यामुल्लाह कहलाते हैं, अल्लाह ताला की बातें। ठीक है, तो ये सब एक्टिवली याद करना, इनके बारे में सोचना, ये अपने दिल में, अपने नफ्स में अल्लाह को याद करना है। और एक होता है अल्लाह को याद रखना। अल्लाह को याद रखना का क्या मतलब कि काम तो आप कोई और कर रहे हैं, आपकी सोच जो है वो किसी और काम के अंदर लगी हुई है, खाने पकाने में लगी हुई है, घर की सफाई सुथराई में लगी हुई है, बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है आपकी सोच। आप बैठ करके अल्लाह के बारे में नहीं सोच रहे, आप बैठ के अल्लाह की मखलूक के बारे में नहीं सोच रहे, आप बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, राइट? आप खाने पकाने और घर के ख्याल के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अल्लाह को याद रख रहे हैं। इस तमाम सोच के साथ साथ अल्लाह की याद भी जारी है आपके अंदर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? चले आपसे पूछते हैं, इसका क्या मतलब है कि ऊपर से तो किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, राइट? अपने घर घर बार, अपने कारोबार, अपने रिश्तेदार, इन सब के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अल्लाह को याद रख रहे हैं, क्या मतलब इसका? जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब गुनाह का कोई मौका हो तो उस गुनाह से बाज आ जाए, उस गुनाह से रुक जाए, इसको कहते हैं अल्लाह को याद रखना। ठीक है ना, एक होता है अल्लाह को याद करना और एक होता है अल्लाह को याद रखना। ठीक है, हर काम में अल्लाह का हुक्म देखना। ठीक है, कि मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ तो नहीं कर रही। ठीक है, क्यों खवातीन की क्लास है, ठीक कि भाई रिश्तेदारों के बारे में बात हो रही है, रिश्तेदारों से बात हो रही है, गीबत तो नहीं हो रही, किसी का दिल तो नहीं दुखा रही, किसी का जो है वो किसी को अजियत तो नहीं पहुंचा रही, ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अल्लाह को याद रखना। तो ये कल्बी जिक्र कहलाता है, ये कल्बी जिक्र की ये दोनों शक्लें हैं, एक अल्लाह को याद करना और एक अल्लाह को याद रखना। ठीक है, और जिक्र लिसानी उसके अलावा है। ठीक है, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दोनों तरह का जिक्र मुस्तकिल कर रहे थे इस बीमारी की हालत में, सही है, और शुक्र अदा करते रहते थे। ये भी अल्लाह ताला, शुक्र अदा करना ये भी एक एक्टिव जिक्र है, यानी शुक्र अदा करना या अल्लाह को याद करना है। ठीक है, अच्छा, कुफर ना करना, नाशुक्री ना करना, ये अल्लाह को याद रखना है, और शुक्र अदा करना ये अल्लाह को याद करना है। ठीक है, जैसे बच्चे ने बात मान ली, बच्चे ने अच्छा काम किया तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, ऐ अल्लाह आपका शुक्र है कि मेरे बच्चे ने मेरी बात मान ली, वरना मैं तो इस काबिल नहीं थी कि मेरी कोई बात मानता, मैं तो मखलूक हूं, मैं तो इंतहाई गुनाहगार और इंतहाई बेकार किस्म की चीज हूं, अल्लाह आपकी कोई मखलूक मेरा बात मेरी बात मान ले, है आपकी मखलूक, ये बच्चा क्या होता है, ये औलाद क्या होती है, ये बेटा ये बेटी क्या होती है, ये अल्लाह का बंदा होती है, अल्लाह की बंदी, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की कोई मखलूक मेरी बात मान रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी बात है ये कि अल्लाह के बंदे ने मेरी बात मान ली, राइट, मैं तो इस काबिल नहीं था कि कोई मेरी बात मानता, मैं तो इस काबिल नहीं था कि कोई मेरी बात सुनता, राइट, मैं क्लास ले रहा हूं और 70 लोग बैठ के क्लास सुन रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मोजज़ा, ये नऊज़ बिल्ला, मोजज़ा तो नबियों के साथ होता है, लेकिन ये तो एक अनहोनी सी बात है कि 70 इंसान बैठ करके, अल्लाह के बंदे 70 इंसान है इस गुनाहगार की बात सुन रहे हैं, हमारे तो बस में ये नहीं है, एक बंदा भी बैठ करके मेरी बात सुने, एक बंदा भी जो है वो कान लगा करके बात को सुनने की कोशिश करे, नहीं, ये तो अल्लाह तेरा एहसान है, ये तो अल्लाह तेरा काम है, ये तो तूने किया ये सब कुछ, जब ये सब कुछ हो रहा है, तो बच्चा अपनी बात मान ले ना, ये मामूली बात नहीं है कि किसी का बच्चा उसकी बात मान ले, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी औलाद ने हमारी बात मान ली, क्या हम इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्या हम इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम तो समझते हैं ये तो हमारा हक है, ये तो मेरा हक है कि मेरा बच्चा मेरी बात माने, राइट, नहीं, कोई हक नहीं है, ये हक अल्लाह का हक है, ठीक है ना, कि उसकी बात मानी जाए, हम कोई थोड़ी खुदा है, हम कोई थोड़ी खुदा है, हमने क्या बनाया, हम किस चीज के खालिक है, हम किसके राजिक है, हम तो अपने बच्चे के राजिक नहीं है, माँ बाप कोई राजिक होते हैं अपनी औलाद के, राइट, कि उनकी बात मानी जाए, भाई राजिक की बात मानी जानी चाहिए ना, हमने कौन सा रिस्क दिया है अपने बच्चों को, कौन सा रिस्क दिया अपने बच्चों को, कौन सी सेहत दी अपने बच्चों को, कौन सा लिबास दिया अपने बच्चों को, कुछ भी नहीं दिया, सब अल्लाह का दिया हुआ है, सब अल्लाह का दिया हुआ है, तो बात तो अल्लाह की मानी जाए, मेरी बात मान ली, ओहो क्या जबरदस्त काम हो गया ये, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह आपका शुक्र है, ये आप ही का बस किया हुआ है, वरना मैं इस काबिल नहीं था। ठीक है, तो शुक्र अदा करना जो है ना, ये अल्लाह का जिक्र करना है एक्टिवली, और पैसिवली का मतलब कि अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करना, अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करना, कुफरान नेमत नहीं करना, ठीक है, कि पता चला जी औलाद को जो है वो बातें सिखा रहे हैं या उस उन चीजों में लगा रहे हैं जो कि अल्लाह की नाफरमानी के काम है, टैब उठा के दे दिया अपनी औलाद को, राइट, अब वो टैब के ऊपर जो है वो गंदी चीजें देख भी रहा है, गंदे लोगों से बातें भी कर रहा है, गंदे किस्म की हरकतें भी कर रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, राइट, तो ये औलाद के मामले में अल्लाह ताला की नाफरमानी, औलाद की नेमत की नाकदरी है ये, नाशुक्री है ये कि औलाद को जो है वो अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते के ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं करते थे, ठीक है ना, तो वो जुबान और कल्ब को अल्लाह की याद में मशगूल रखते थे और शुक्र अदा करते रहते थे। ठीक ठीक है जी, बहुत सारी बातें हो गई, कुछ उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा कागज के ऊपर या दिल के कागज के ऊपर। ठीक है, इस शदीद बीमारी की वजह से सब अजीजों, दोस्तों और पड़ोसियों ने उनको अलग करके आबादी से बाहर एक कूड़ा कचरा डालने की जगह पर डाल दिया था, जैसे बर्स के मरीजों को डाल दिया जाता था। कोई उनके पास ना जाता था, सिर्फ उनकी बीवी उनकी खबरगीरी करती थी, यानी खबर लिया करती थी उनकी, उनकी खिदमत किया करती थी, उनको खाना वाना पहुंचाती थी। ठीक है, अच्छा, बीवी जो थी वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी या पोती थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे की बेटी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, अब ये वैसे तो इसराइली रिवायात है तो 100% कंफर्म तो नहीं होती इसराइली रिवायात, ठीक है ना, कि एक बिल्कुल एक्यूरेटली, क्योंकि ये हदीस और कुरान मजीद की तरीके से इनकी कोई ऑथेंटिसिटी ऐसी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका इनकार करने भी की भी कोई वजह नहीं है कि भाई अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी या पोती थी, कोई वजह इसको इनकार करने की भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम अंदाजन ये कह सकते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो जमाना था ना, यानी जिस जमाने में वो थे, ये जमाना यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद का करीब का ही जमाना था, 2 जनरेशन लेटर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद 2 जनरेशन या 1 जनरेशन बाद, क्योंकि बीवी जो थी इनकी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पहले से पहले का कुछ ये जमाना लगता है मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में लिखा है कि वो भी जो थे ना, वो भी कोई 2-3 जनरेशन यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया था, चंद जनरेशन बाद। ठीक है, अब वो कैसे था, अल्लाह अकबर, वो समझ में नहीं आता कैसे था, लेकिन था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल की तादाद जो है वो 6 लाख हो चुकी थी, 6 लाख, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल की कितनी तादाद थी, 12 12 मर्द और उनकी बीवियां होंगी, है ना, बीवियां तो एक से ज्यादा होती थी उस जमाने में, तो 10 10 कभी 50 50 भी बीवियां होती थी उस जमाने में। ठीक है, तो बनी इसराइल की कुल तादाद जो है ना उस वक्त फ्यू हंड्रेड्स होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने, और मूसा अलैहिस्सलाम का जब जमाना आ गया था तो उस वक्त बनी इसराइल की तादाद 6 लाख हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है, चंद जनरेशन हैं उनके दरमियान। ठीक है, तो उसी तरीके से अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी जमाना जो था ना वो इसी दरमियान का जमाना कुछ था। ठीक है, तो फरमाता है कि कोई उनके पास ना जाता था, सिर्फ उनकी बीवी उनकी खबरगीरी करती थी, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी या पोती थी, जिसका नाम लैया बिनते मीशा इब्न यूसुफ अलैहिस्सलाम बताया जाता है। ठीक है, अब इब्न यूसुफ थी या इब्न इब्न यूसुफ थी, पोती या बेटी, तो तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये बात लिखी हुई है, मालो जायदाद तो सब खत्म हो चुका था, उनकी जौजा मुहतरमा मेहनत मजदूरी करके अपने और उनके लिए रिस्क और जरूरियात फराहम करती थी। ठीक है, यानी ऐसी मजबूरी की हालत आ गई थी कि औलाद भी खत्म हो गई थी ना इनकी सारी की सारी, तो अब बीवी ही जो है ना किसी तरीके से कमाई करती थी और जरूरियात फराहम करती थी अपने और उनके लिए, और उनकी खिदमत करती थी। ठीक है, तो शौहर की खिदमत करना जो है वो बीवी का, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये उसके कामों में से एक काम है। ठीक है, अब वो आजकल के फेमिनिज्म के दौर के अंदर जो है वो इसको हराम, कल हराम बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो जो माशाल्लाह ट्रेडिशनल घरानों से आती हैं तो उनको जो है वो ये बात पता होती है कि शौहर की खिदमत भी करनी होती है, लेकिन अदरवाइज जो है वो शौहर की खिदमत जो है वो बिल्कुल ही एक यानी दीन में से उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, कोशिशें इसी पर हो रही हैं मीडिया के जरिए से और तालीमी निजाम के जरिए से कि ये खिदमत नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है ना, बस अताज जो है वो अल्लाह की है और खिदमत जो है वो गरीबों की है। ठीक है ना, गरीबों की खिदमत करो, चाहे उसके लिए तुम्हें अपना दीन भी कुर्बान करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी तुम गरीबों की खिदमत करो। ठीक है ना, और अताअत जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की करो। ठीक है, तो बीच में ना रसूल की अताअत करने की जरूरत है, ना मौलवी की अताअत करने की जरूरत है, ना किसी मुफ्ती की अताअत करने की जरूरत है, अल्लाह की अताअत करूंगी मैं। ठीक है ना, अब अल्लाह की अताअत कैसे करूंगी, हु केयर्स, कैसे करूंगी ये बिकॉज करनी तो है नहीं असल में, ये तो सिर्फ नारे होते हैं अल्लाह की अताअत करना। ठीक है ना, करनी वरनी कोई थोड़ी होती है, लेकिन असल में किसी दूसरे की अतात नहीं करनी होती ना, इस वजह से नारा लगा दिया जाता है अल्लाह की अतात करूंगी बस, ठीक है, करनी वरनी को थोड़ी होती है। और खिदमत किसी करूंगी है, खिदमत जो है वो किसी करूंगी भाई, झुग्गियों में जाकर के ना मैं गरीबों की खिदमत करूंगी, चाहे वहां पे हीजड़े रहते हो, है ना भाई, इनको जिनको आनकर आजकल जो है वो ट्रांसजेंडर कहा जाता है, ठीक है, हालांकि वो ट्रांसजेंडर होते नहीं है, ठीक है ना, बहरहाल हिजड़े हैं जो भी हैं, तो हिजड़ों की मैं खिदमत करूंगी जाकर के, बस्तियों में जाकर के, गरीबों की बस्तियों में जाकर के, अपने घर में कोई थोड़ी खिदमत करने की जरूरत है मुझे, है ना, वो तो मेरी नाक कट जाएगी मेरी खिदमत करने, अगर मैं घर में शौहर की खिदमत कर ली तो नाक कट जाएगी मेरी, ठीक है ना, और बड़ी जिल्लत और रसवाई हो जाएगी मेरी, ठीक है। लेकिन ये है नहीं ऐसा, दीन इस्लाम ने तो कुछ और बताया था, ठीक है, औरत के जिम्मे झुग्गियों में जाकर के गरीबों की खिदमत, औरत दीन इस्लाम ने तो नहीं लगाई, अल्लाह ताला ने तो नहीं लगाई थी, ठीक है, लेकिन मीडिया ने लगा दी है, और लड़कियां जो है भागी चली जा रही हैं खिदमत करने के लिए आजकल, है ना, जो कॉलेज में जाती हैं फिर यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो वो फिर सोशल वर्क्स के नाम के ऊपर खिदमत करने के लिए जाती हैं बस्तियों के अंदर, गरीबों की बस्तियों, ठीक है, और घर वाले जो है वो खिदमत से महरूम बेचारे, ठीक है। तो ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी या पोती जो थी लैया, तो ये तो ऐसी नहीं थी ना, ठीक है, तो ये अपने शोहर की खिदमत करती थी, ठीक है, तो इस तरीके से फिर इनका काम चलता था। अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये इब्तिला व इम्तिहान कोई हैरत व ताज्जुब की चीज नहीं थी, ठीक है, उन्होंने चले सवाल पूछ लिया इसके ऊपर कि घर के काम करने के लिए मेड रखना सही है क्या, घर के काम करने के लिए मेड रखना सही है क्या, यानी नौकरानी खादिमा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, और सहाबा के घरों के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम के घरों के अंदर जो है वो मेड्स होती थी, ठीक है, यानी बांदियां होती थी उस जमाने में, और खादमाएं भी होती थी, यानी कि सिर्फ बांदियां होती, बल्कि बांदियों का मतलब होता है कि जो कि जंग से जो है ना वो पकड़ करके कोई आ गई हो तो उनको जो है वो एज अ बांदी आपने घर के अंदर रख दिया हो, वरना खादिमा के तौर पे कोई मुसलमान औरत भी खादिमा के तौर पे होती थी, ठीक है, तो खादिमा रखना और बांदी रखना जो है ना ये, या कोई हाउस बॉय भी रखना, ठीक है ना, एज लॉन्ग इस पर्दे का पूरा ख्याल रखा जा रहा है तो हाउस बॉय भी हो सकता है घर के अंदर, ठीक है, खानसामा भी हो सकता है घर के अंदर, तो ये उसके मुनाफी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जी अब आप कोई खिदमत नहीं कर रही हैं अगर आपने हाउस बॉय या आपने कोई बांध दिया उस किस्म का कोई रख लिया तो, ठीक है, तो उसके साथ भी खिदमत हो सकती है, ठीक है, यानी अब सारे काम उसने को थोड़ी करने होते हैं, उसने जो है वो बाकी काम करने करवाए उससे बाकी काम, लेकिन जो शौहर की खिदमत है वो उसके अलावा होगी ना, ठीक है, उसकी उसके खिलाफ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, हमारे अपने घर के अंदर हाउस बॉय आता है, अंदर घर में जा वो पाकिस्तान जाते हैं तो वहां पे मासियां आती हैं काम करने के लिए, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल मुराद नहीं है कि जी सारा बोझ जो है वो बीवी के ऊपर डाल दो, और बीवी जो है वो सिर्फ जो है ना वो खाने पकाती रहे और सफाई करती रहे और ये करती रहे, वो एक अलग एक्सट्रीम है, तो दीन इस्लाम तो एतदाल का रास्ता है ना, ये ना उस एक्सट्रीम ना इस एक्सट्रीम, ठीक है, यानी उस एक्सट्रीम का मतलब कि बस हर वक्त जो है वो कूल हो के क्या कहते हैं उसको, कूल्हे का बैल जो होता है, कूल्हों का बैल कहते हैं, चाहे वो बैल की तरह से खिदमत करती रहे, ठीक है ना, ये एक एक्सट्रीम है, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि कुछ नहीं करना, नहीं जी ये तो बस हराम है, ये तो करना ही नहीं है बिल्कुल, ये दूसरी एक्सट्रीम है, बहरहाल अब हर कोई अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता ना मेड और ये सारी चीजें, वो भी एक अलग चीज है। खैर आगे चलते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये इब्तिला व इम्तिहान कोई हैरत व ताज्जुब की चीज है, कि ये तो इतने अल्लाह के नेक बंदे थे, इतना शुक्र करते थे, इतना जिक्र करते थे, तो इनके ऊपर जो है वो इतनी इब्तिला और इम्तिहान क्यों आ गया, तो उसका जवाब दे रहे, यानी जहन के अंदर एक सवाल पैदा होता है, जो गौर से बात को सुनते हैं तवज्जो देते हैं, ठीक, तो उनके जहन में एक तालिब इल्माना सवाल पैदा होता है कि क्यों इनके ऊपर क्यों आया इतना बड़ा इम्तिहान क्यों आया, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि ये कोई हैरत व ताज्जुब की चीज नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अशद्दुन्नासी बलाउन बला बलाअन अल अंबिया, यानी बला के एतबार से, आजमाइश के एतबार से, जो सबसे ज्यादा शदीद इंसान थे ना, जिनके ऊपर आजमाइश आई, वो कौन थे? अल अंबिया, ठीक है, वह सुम्म सालिहून, और उनके बाद जो नेक लोग, ठीक है, सुम्मल अमसल फल अमसल, ठीक है, फिर उनसे उनके जैसे जो लोग थे और उनके जैसे जो लोग थे, ठीक है, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो नेक लोग जुड़े हुए थे ना, इनके ऊपर सबसे ज्यादा आजमाइशें आई, ठीक है, और फिर जो उनकी जैसी जिंदगी गुजारता है, अंबिया जैसी जिंदगी गुजारता है और सालिहून जैसी जिंदगी गुजारता है ना, तो उनके ऊपर फिर दर्जा बदर्जा जो है वो आजमाइश उसके हिसाब से आती है। जैसे लिखा कि यानी सबसे ज्यादा सख्त बलाएं और आजमाइशें अंबिया अलैहिस्सलाम को पेश आती हैं, उनके बाद दूसरे सालिहीन को दर्जा बदर्जा, यानी एक रिवायत में है कि हर इंसान का इब्तिला और आजमाइश उसकी दीनी सलाबत और मजबूती के अंदाजे पर होता है। दीनी सलाबत, सल्ब, सल्ब का जो लफ्ज है ना, ये पीठ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, पीठ, सल्बी औलाद, पीठ की औलाद, यानी जो बायोलॉजिकल औलाद होती है ना, उसको सल्बी औलाद कहते हैं, ठीक है, तो किसकी पीठ कितनी मजबूत है, ठीक है ना, जितनी मजबूत पीठ होगी वो उतना वजन उठा सकता है, ठीक है ना। कभी आपने मजदूरों को देखा कि वो अपने ऊपर जो है वो पीठ के ऊपर बोरियां, बड़ी बड़ी बोरियां लाद करके लेकर के जा रहे होते हैं, ठीक है ना, कभी ईंटें लाद करके लेकर के जा रहे होते हैं, ठीक है, तो पीठ मजबूत जितनी होती है ना, उतना बोझ उठा सकता है इंसान, ठीक है। तो अल्लाह ताला का उसूल क्या है, जो अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद के अंदर हमें बता चुके हैं कई दफा, ठीक है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी नफ्स के ऊपर बोझ नहीं डालता सिवाय जितना उसकी वुसअत है। क्या मतलब वुसअत है? जितना उसकी पीठ मजबूत है, बोझ उठाने की जितनी उसके अंदर सलाहियत है, अल्लाह ताला उसके ऊपर सिर्फ उतना ही बोझ डालते हैं, ठीक है ना। अब ये जो दुनियावी आजमाइशें हैं, जैसे जिस्मानी तकलीफ या जो है वो कोई और गम वाली तकलीफ, ठीक है ना, अब ये बोझ है ये। अब हर इंसान जो है ना, वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, जिस्मानी या नफ्सियाती, ठीक है, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, अल्लाह को पता है ना, अल्लाह ताला ने बनाया है ना हमें, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, उस मैन्युफैक्चरर को पता होता है कि भाई इस प्रोडक्ट की कितनी जो है वो लोड हैंडल कर सकती है प्रोडक्ट, अल्लाह ताला को पता है कि हम कितना लोड हैंडल कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं उतना ही डालूंगा जितना मैंने तुम्हें हैंडल करने की सलाहियत दी हुई है, उससे ज्यादा नहीं डालूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो अब अंबिया की जो हैंडल करने की लोड हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा उनके ऊपर बोझ डालते हैं। और उसी तरीके से जो अंबिया जैसे बनते हैं, नेक साले मुत्तकी परहेजगार, ठीक है, तो उनकी लोड बेयरिंग, जज़ाकअल्लाह, आपने लोड बेयरिंग कैपेसिटी का लफ्ज़ है ना, तो उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो अंबिया के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, तो उनके ऊपर अल्लाह ताला उसके हिसाब से जो है वो आजमाइश डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यही मतलब है कि इन हर इंसान का इब्तला और आजमाइश उसकी दीनी सलाबत और मजबूती के अंदाजे पर होता है, ठीक है, जो दीन में जितना ज्यादा मजबूत होता है, उतनी उसकी आजमाइश व इब्तिला ज्यादा होती है, ठीक है ना, दीन में जितना ज्यादा मजबूत, उतनी उसकी आजमाइश और इब्तिला ज्यादा, ठीक है, क्यों? ब्रैकेट्स में उसकी वजह भी बयान कर दी, ताकि इसी मिकदार से उसके दराजात अल्लाह के नजदीक बुलंद, यानी क्यों डालते हैं, अल्लाह ताला को कोई मजा आता है किसी को तकलीफ में मुबतला करके, है ना, होता है ना कुछ, जैसे छेड़ करके या बुली करके, है ना, देख सुना होगा आपने, स्कूलों के अंदर बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, ठीक है ना, छेड़ते हैं, मारते हैं, या वैसी जहनी अजियत देते हैं, किसी ना किसी तरीके से तीन चार बच्चे मिलकर के एक बच्चे को बुली करना शुरू हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहले तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर था, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा स्कूलों के अंदर बुलिंग हो रही है, यानी ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है अमेरिका के अंदर, कि बुलिंग जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और बच्चे जो है वो उसकी वजह से खुदकुशियां कर लेते हैं, बुलियंग की वजह से खुदकुशियां हो जाती हैं, या मार देते हैं दूसरे बंदे को, मार देते हैं, ठीक है। यूरोप के अंदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज में बुलियंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, लेकिन अब जो है वो, अब से मुराद अभी नहीं, बिल्कुल आज नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से जो है वो पाकिस्तान और अपने जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, मुसलमान मुल्क जो कहलाते हैं, मुसलमान मुआशरे कहलाते हैं, वहां पर भी स्कूलों के अंदर बहुत ज्यादा बुलियंग। ये बुलियंग जो है ना, ये फिजिकल बुलियंग भी होती है कि मारना शुरू कर दिया हाथ से या किसी चीज से, और एक होती है नफसियाती बुलियंग। नफसियाती बुलियंग भी एक बहुत खतरनाक, बल्कि फिजिकल से ज्यादा खतरनाक नफसियाती बुलियंग होती है, ठीक है ना। नफसियाती बुलियंग का मतलब क्या कि बच्चों ने मिलकर के जो है ना, वो किसी एक बच्चे को जो है वो टॉन्ट करने का निशाना बना लिया, टॉन्ट कर रहे हैं वो बच्चे को, ठीक है ना। वो उसको जो है ना वो चिढ़ा रहे हैं, वो उसको जो है वो आर दिला रहे हैं कि ओ तुम तो बड़े, तुम तो ऐसे हो, जैसे बेचारे का वजन थोड़ा ज्यादा है तो अब उसको वजन मोटे, तुम मोटे हो, तुम मोटे, उसको उसको इस किस्म की बातें बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसके जिस्म के बारे में बोल रहे हैं। या ये कि कोई जरा शरीफ सा, जरा नेक बन बच्चा है ना, अच्छे घराने से आता है, तो अब ये तीन चार बच्चे मिलकर के जो है ना वो उसके ऊपर उसको, ओ बड़ा भोला बनता है, बड़ा जो है ना ये तो बड़ा नेक बनता है, बड़ा, तो चलो हम उसको, हम देखते हैं कितना नेक है ये, ठीक है ना। अब ये कैसे देखते हैं कि कितना नेक है ये तीन चार बच्चे मिलकर के जो है ना, फिर उसको गंदी गंदी चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं ना स्कूल के अंदर ना। बच्चे, ये जो दुनियादार घरानों के बच्चे होते हैं, इनके पास टैब्स होते हैं, इनके पास टैब्स होते हैं, फोन होते हैं। अब ये कोई बच्चा, इनको जरा शरीफ घराने का नजर आता है ना, थोड़ा जरा भोला भाला सा, सीधा साधा सा, तो उस बच्चे को जो है ना वो अपने टैब्स के ऊपर फिर गलीज चीजें दिखाते हैं, पोर्नोग्राफी दिखाते हैं, है ना, नंगी तस्वीरें दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा करने से जो है ना, फिर वो बच्चा जो है वो फिर एक नफसियाती हैजान का शिकार हो जाता है, क्योंकि जब एक बच्चा जब ये गंदी गलीज तस्वीरें देख लेता है ना, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 7 8 साल का ही क्यों ना हो, अभी वो मेच्योर नहीं हुआ, अभी वो फिजिकली मेच्योर नहीं हुआ, लेकिन ऐसी गंदी तस्वीरें देखने से जो है ना उसके अंदर के जो हॉर्मोन्स होते हैं ना वो किक किक इन हो जाते हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। डोपामाइन गालबन उस हार्मोन को कहते हैं, पता नहीं डॉक्टर तो मैं हूं नहीं, ठीक है। तो वो इस किस्म के हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और वो बच्चा जो होता है ना, फिर वो अपनी उम्र से पहले ही, यानी अभी वो बालिग हुआ नहीं था, वो उस उम्र को नहीं पहुंचा कि वो बालिग हो जाए, उससे पहले ही जो है ना वो उसके अंदर इस किस्म की कैफियात डिवेलप होना शुरू हो जाती है, जिनसी कैफियात डिवेलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। वीडियो गेम्स की लत लगा देते हैं, है ना, सारे बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। अब एक बच्चा जो है वो, उसके अम्मा अब्बा उसको वीडियो गेम नहीं खेलने दे रहे, कहते अच्छा तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं खेलने दे रहे, हम खिलाते हैं तुम्हें, देखो मेरे टैब के ऊपर ये वाला वीडियो गेम है, देखो मेरे पास ये है, ये देखो मैं, इस तरह से, इस तरीके से मिल करके जो है ना वो अजियत देना शुरू कर देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो फिजिकल बुलियंग भी हो रही होती है, मेंटल बुलियंग भी हो रही होती है इन स्कूलों के अंदर, ठीक है ना। एक बच्चा जो है वो सिगरेट नहीं पीता, उसको सिगरेट की लत लगवाते हैं स्कूलों के अंदर, दूसरे लड़के जो होते हैं ना वो सिगरेट की लत लगवाते हैं, अच्छा तुम नहीं पीते, ये जरा चेक करके तो देखो, है बड़ी बड़ा मजे की चीज है, हम पीते हैं तो बड़ा मजा आता है, तुम भी जरा कश तो लगाओ। वो कश लगाता है सिगरेट का, बड़ा अच्छा लगता है उसको, फिर वो कश लगाना शुरू हो जाता है, सिगरेट नोश हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह स्कूलों के अंदर जो है वो ड्रग्स, पाकिस्तान के स्कूलों में इस्लामिक स्कूल्स, जिनको सो कॉल्ड इस्लामिक स्कूल कहा जाता है, बड़ी कॉमन एक ड्रग है जिसको आइस कहते हैं, आइस, ठीक है ना। नॉन इस्लामिक स्कूल्स तो रहने दें आप, है ना, वहां पर तो पता नहीं आइस के साथ साथ और क्या क्या होता है, फायर भी होती है, होती होगी, लेकिन एक ड्रग है आइस, मनशियात, ठीक है ना। तो आइस की जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना स्कूलों के बच्चे जो है वो आइस के ड्रग एडिक्ट है पाकिस्तान, कराची शहर के अंदर, ठीक है ना, जहाँ पे दारुल उलूम कराची भी है, जहाँ पे दारुल उलूम बिलरोनी टाउन भी है, जहाँ पे जामियतुल रशीद भी है, जहाँ पे सारे जामियात है, उसी शहर के अंदर जहाँ इतना दीन दीन दीन, राइट, वहीं के स्कूलों के अंदर बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है। और ये खुद नहीं करते खाली, कि भाई अपने अपनी जिंदगी में बस ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं या गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, नहीं, ये दूसरों को लगाते हैं, ये दूसरे बच्चों को नहीं छोड़ते कि हाँ भाई वो नेक है तो चलो उसको नेक रहने देते हैं। नहीं, तुम क्यों नेक हो, हम देखते हैं तुम कैसे नेक रहते हो, हम देखते हैं तुम कैसे नेक रहते हो, ठीक है ना। फिर वो ये सारी चीजें दूसरे बच्चों को लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब बुलियंग के तरीके होते हैं, ठीक है ना। ये स्कूलों की बात हो रही है, माशाल्लाह किसी ने डायरेक्ट मैसेज में लिखा कि घरों में भी ये मामला होता है, सास नंदे भाभी के साथ या भाभी अपनी नंद सास के साथ नफ्सियाती टॉर्चर कर रही होती है, ये भी बुलियंग ही होती है, ठीक है ना। तो ये सारी बुलियंग जो हमारे मुआशरे के अंदर चल रही है ना, हर लेवल के ऊपर चल रही है। इसके साथ साथ तहज्जुदें, माशाल्लाह तहज्जुदें भी चल रही हैं, राइट। इसके साथ साथ जो है वो नफले भी चल रही हैं, और दूसरी और भी बहुत सारे सदके खैरात चल रहे हैं। तो ये जो दीन है ना, ये है तमाशा, ये दीन नहीं है, ये सिर्फ तमाशा है, ठीक है ना। इस तमाशे को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे ना, तो उस वक्त तक हम दीनदार नहीं बन सकते, ठीक है। ये मकसद है तफसीर की क्लास के अंदर ये बातें करने का, कि हम ये तमाशे खत्म करें, दूसरों को अजियत पहुंचाना, तंग करना और बुली करना जो है वो खत्म करें, तब ताकि हमें कुरान मजीद से फायदा हासिल होना शुरू हो जाए ना, ठीक है। तो ये जो आजमाइशें और इब्तिला जो है ना, ये हर बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से अल्लाह ताला टालते हैं, ठीक है ना। अब वो बंदा जो है ना, वो असल में अपने मर्जी से जो है वो फिर अल्लाह ताला की बनाई हुई आजमाइशों को जो है ना, फिर वो मिस हैंडल कर रहा होता है, ठीक है ना। इस वजह से जो है फिर वो उसकी जिंदगी जो होती है ना, वो खराब हो जाती है। अल्लाह ताला उसके लोड बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर लोड नहीं डाल रहे होते, लेकिन ये बंदा जो है ना, वो चूंकि शुक्र और सबर का रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा होता, बल्कि शैतान के रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी के रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। इस वजह से इसके ऊपर जो अल्लाह ताला ने हालात डाले थे ना, ये हालात उसको ऐसे लगना शुरू हो जाते हैं कि जैसे कि ये उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है, हालांकि वो ज्यादा नहीं होते, लेकिन इसकी नाफरमानी वाली जिंदगी की वजह से, गुनाहों वाली जिंदगी की वजह से, शैतान इसके दिमाग में ये सोच डाल देता है कि नहीं, ये मेरी बर्दाश्त से ज्यादा है, हालांकि वो ज्यादा नहीं होते, ठीक है ना। चूंकि बर्दाश्त से ज्यादा अब ये सोचना शुरू हो गया, तो इस वजह से ये जो है ना, फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है ना। फिजिकली अपने आप को जो है वो काटना, या अपने रगें काटना, नसें काटना, इस किस्म की हरकतें होती है ना बहुत ज्यादा लड़कियों में, नसें काटने वाली बहुत ज्यादा कॉमन है। और या जो लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, उनके अंदर अपनी जिंदगी खत्म कर देना, खुदकुशी कर लेना, ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ये खुदकुशी कर लेता है, ठीक है ना। कि मेरे ऊपर तो मेरी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ आ गया है, बर्दाश्त से ज्यादा बड़ी तकलीफ आ गई, ये अपने आप को मार लेते हैं, ठीक है, इसी को खुदकुशी कहते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि इसने इस वजह से अपने आप को मारा होता है ना, ठीक है, इस वजह से इसकी सजा क्या है कि ये हमेशा जहन्नुम में जलता रहेगा, यानी हमेशा जहन्नुम में अपने आप को ऐसे ही मारता रहेगा जैसे इस दुनिया में इसने अपने आप को मारा है। क्यों मारा इसने अपने आप को दुनिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसने अल्लाह की बनाई हुई आजमाइश को जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ी आजमाइश समझना शुरू कर दिया, ठीक है ना, और इस वजह से इसने अपनी जान ले ली, इसकी उसको सजा मिलती है। तो खुदकुशी की सजा जो है ना, वो बड़ी खौफनाक सजा है, हदीस मुबारक से पता चलती है, ठीक है ना। वरना आम लोग क्या समझते हैं, ओहो बेचारा खुदकुशी करने वाला तो बड़ा मजलूम है, ये तो बेचारा इतना तंग आकर के इसने अपनी जान ले ली है, तो बड़ा मजलूम था, इसको तो जाना चाहिए जन्नत में डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहिए खुदकुशी करने वालों को, क्योंकि इसके ऊपर सारे जुल्म करते थे और ये मजलूम था। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि नहीं, जिसने खुदकुशी करी है वो जहन्नुम में जाएगा, और वो उसी तरीके से अपने आप को मारता रहेगा जिस तरीके से उसने जिंदगी में मारा था। वजह क्या, वजह यही है कि ये गुनाहों के रास्ते के ऊपर पड़ा, अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते के ऊपर पड़ा, इस वजह से इसके जहन में ये ख्याल पैदा हो गया कि मेरे ऊपर मेरी लोड बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा आजमाइश आई, ठीक है ना। हालांकि अल्लाह ताला ने क्या उसूल बनाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ठीक है। तो अंबिया के ऊपर अल्लाह ताला जो इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें डालते थे, वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इतनी बनाई थी, और वो अंबिया जो थे वो नाफरमानी के रास्ते के ऊपर नहीं चलते थे, गुनाहों के रास्ते के ऊपर नहीं चलते थे। ठीक है, किसी ने पूछा है कि क्या फिर हम उन लोगों के साथ इस वजह से रिश्ता यानी मिलना जुलना कम कर सकते हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं जो कि गलत है। जी मिलना जुलना कम करें, जितना ज्यादा मिले जुलेंगे ना उतना ज्यादा उनकी सोच आपके अंदर आ जाएगी। हाँ अच्छा, यहाँ पर क्लास हमने खत्म करनी है, टाइम चूंकि पूरा हो चुका है, लेकिन एक सवाल जो है ना वो हम छेड़ करके फिर क्लास खत्म कर देते हैं, वो अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वो ये कि जो हजरत ने यहाँ पे जुमला लिखा है, गौर से इस जुमले को अगर हम पढ़ें कि जो दीन में जितना ज्यादा मजबूत होता है उतनी उसकी आजमाइश और इब्तिला ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो अब इस जुमले से क्या एक तालिबे इल्माना सवाल जहन में पैदा होता है? आप अगर ये सवाल लिख दें तो फिर हम आपकी जान छोड़ देंगे। जुमला क्या है? जो दीन में ज्यादा मजबूत होता है उतनी उसकी आजमाइश और इब्तिला ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर तालिबे इल्माना सवाल, माशाल्लाह 78 तालिबात मौजूद हैं, तो किसी के जहन में तो आया होगा एक तालिबे इल्माना सवाल, वो क्या? हम भी दीन सीख रहे हैं तो अब ज्यादा डरने की जरूरत है। ये इस वैसे सवाल तो ना हो, ये तो एक कमेंट हो, हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल क्या, क्यों होता है ऐसा, ये ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा क्यों होता है इसका जवाब तो एक्चुअली हम दे चुके हैं आपको, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, वो तो सवाल भी हमने बता दिया, जवाब भी हमने बता दिया कि भाई उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से उसके ऊपर जो है वो आजमाइश ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा का जवाब तो हो चुका, अब दूसरा सवाल वो क्या? दीन पर चलना मुश्किल काम है, एक सवाल किसी ने लिखा कि क्या दीन पर चलना मुश्किल काम है? आसान तो वैसे नहीं है, जिसके ऊपर ज्यादा आजमाइश हो क्या वो ज्यादा नेक बंदा है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। हाँ, जिसकी जिसके ऊपर आजमाइशें ज्यादा आ रही हैं और वाकई आजमाइशें ही हैं, ठीक है ना, यानी वो सबर कर रहा है उनके ऊपर, इसका मतलब ये है कि आजमाइशें आ रही हैं, तो वो दीन के अंदर ज्यादा आ गए। ये एक एक क्राइटेरिया के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो सवाल, then what about those ulama who live comfortable lives? नहीं, that's what you think that they live comfortable lives. That's not the reality. They don't live comfortable lives. Allah से फिर इन आजमाइश में कैसे इस्तेकामत मांगे? सवाल आपका। चलें, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, अब आप लोगों की अगली क्लास भी शुरू होनी है, तो इस वजह से सवाल जो है ना वो ये करें कि अगर दीन में ज्यादा मजबूत होने से ज्यादा आजमाइश और इब्तिला, तो जो इल्म वाले लोग होते हैं या जिनको ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई दीन में ज्यादा मजबूत होने से तो फिर ज्यादा आजमाइश और इब्तिला आएगी, तो फिर वो दीन में ज्यादा मजबूत होने की कोशिश क्यों करते रहते हैं, है ना, दीन में और आगे बढ़ने की कोशिश, और ज्यादा अमल की कोशिश, और ज्यादा जो है वो दीन सीखना, और ज्यादा दीन पर अमल करना, है ना, आगे जो है वो आजमाइशों और इब्तिला इंतजार कर रही हैं, और आप जो है वो उन्हीं की तरफ, आप गोया के आबैल मुझे मार, राइट, आबैल मुझे मार, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये सवाल था, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली क्लास में अल्लाह ने तौफीक दी तो बात करेंगे। वाखर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।